aesthetic structure, economic structure, political structure, ideological structure, और क्या कहते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वैल्यूज के, वो अपने अपने दायरों में अपने अपने मेयारात का तायुन करते रहे। अब जो मसला था वो ये बताया था हमने कि बज़ाहिर ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद है और इन स्ट्रक्चर्स का अपना अपना दायरा है और अपने अपने दायरे के अंदर कदर का तायुन होगा। मसलन ये कि टेक्निकल अफजार टेक्निकल स्ट्रक्चर के अंदर मीनिंगफुल होंगी और एस्थेटिकल वैल्यूज एस्थेटिकल पैराडाइम में वैल्यूबल होंगी, इकोनॉमिक वैल्यूज इकोनॉमिक वैल्यूज के अंदर होंगी, इसी तरीके से मॉरल वैल्यूज मॉरल। इससे हम दो काम कर देते हैं, एक काम तो हम ये करते हैं कि कदर को मुख्तलिफ खानों में बांट देते हैं और ये समझते हैं कि कोई ऐसी कदर नहीं है जो तमाम दायरों के अंदर यकसा हैसियत और यकसा तौर पर रेलेवेंट हो। दूसरा ये इल्यूजन है, हम ये इस आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है लेकिन हकीकतन ये एक इल्यूजन होता है, ये नजर का धोखा होता है। दूसरा इसमें ये मसला पैदा होता है कि हम ये समझते हैं कि कदर जो है वो उस स्ट्रक्चर के अंदर ही पहचानी जाएगी जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो है और मॉरल स्ट्रक्चर का भी अपना एक दायरा है। इसका मतलब ये है कि मॉरल जो पोजीशन होगी वो मॉरल दायरे के अंदर तो रेलेवेंट होगी लेकिन उस दायरे से बाहर वो अपनी रेलेवेंस खो देगी। मतलब ये कि अगर आप ये कहें कि भाई ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसके नतीजे में माशी तरक्की तो हो रही है लेकिन इसके नतीजे में जो मॉरल वैल्यूज उसका वो कहे नहीं इसका इससे क्या ताल्लुक है, ये अलग चीज है, ये तो एक टेक्निकल चीज है। यानी कि इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करने के नतीजे में इकोनॉमिक वेलबींग हो रही है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है और इकोनॉमिकली ये एक वैल्यूएबल डिसीजन है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसके नतीजे में सरमाए की बढ़ोतरी मुमकिन हो जाए। तो जाहिर है कि अगर सरमाए की बढ़ोतरी मुमकिन हो गई लेकिन उसके नतीजे में कुछ इखलाकी कदरें पामाल हो रही है तो आप कहें देखें इसको आप चैनल करेंगे मॉरल स्ट्रक्चर के अंदर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आप ना छेड़ें। इसी तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो टेक्निकलिटीज हैं या टेक्निकली जो चीजें वैल्यू कर रही हैं वो ये कि आपके जो मकासद के हुसूल के लिए जो टेक्नोलॉजी आप इख्तियार कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी उन मकासद के हुसूल को मुमकिन बना रही है या नहीं बना रही, इसकी बुनियाद पर टेक्निकली चीजों को आप वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी उन मकासद को ही क्वेश्चन कर दे जिसकी बुनियाद पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो आप कहेंगे देखें ये मसला टेक्नोलॉजी के बाहर का मसला है, इसको आप मॉरल प्लेन पे जाके देखें। टेक्निकल प्लेन पर जो चीजों को हम वैल्यू करेंगे वो वैल्यूज हैज नथिंग टू डू विद मॉरल वैल्यूज। तो आप मॉरल लाइफ को लिमिट करते चले जाते हैं, बुनियादी तौर पर कदर के इस तायुन के नतीजे में आप वैल्यूज को लिमिट करते हैं, खास तौर पर मॉरल वैल्यूज को लिमिट कर देते हैं एक बहुत ही गैर अहम दायरे के अंदर। यानी कि अब तुम्हारे जो पूरी जो निजाम जिंदगी चल रही है वो टेक्निकल बुनियादों पर चल रही है, टेक्नोक्रेटिक प्लेन पर तुम डिसीजन ले रहे हो, आप इकोनॉमिक प्लेन पर डिसीजन ले रहे हो, आप एस्थेटिकल प्लेन पर डिसीजन ले रहे हो और जिंदगी का एक छोटा बहुत दायरा जो बढ़ गया क्योंकि बुनियादी तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइज भी नहीं हो पाता उसको आप मॉरेलिटी के खाते में डाल दें,
वो भी सिर्फ फैमिली की हद तक ही होता है,
वो भी फैमिली की हद तक भी नहीं होता, आपकी इंफराजी जिंदगी पर्सनल चॉइसेस की तरह। तो मॉरल चॉइस की हैसियत जो है वो प्रेफरेंसेस की हैसियत में इख्तियार कर जाती है, जिसको मैकेंटायर कहता है इमोटिविज्म। इमोटिविज्म कि जिस तरह एक जज्बाती कैफियत आपके ऊपर तारी होती है वो आपको प्लेजेंट लगती है, एक जज्बाती कैफियत दूसरे पे तारी होती है उसे अनप्लेजेंट रखती है, लेकिन आप ये इंट्रिंसिकली नहीं बता सकते कि ये जज्बाती कैफियत इस जज्बाती कैफियत से इंट्रिंसिकली सुपीरियर है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते इमोटिविस्टिक पैराडाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जज्बाती कैफियत पैदा ही नहीं हुई, जो कि इनके हुई तो जाहिर है अगर दोनों में जो जज्बाती तगैयुर है उसको आप के कसने और परखने का क्या पैमाना है, वो तो इंफरादी नौयत पर है और वो जज्बाती सतह पर आपकी कैफियत और इनकी कैफियत में जो फर्क है वो फर्क है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, मॉरल डिस्कोर्स एस्थेटिसाइज होकर रह जाती है और वो रिलेटिवाइज होकर रह जाती है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वैल्यू स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये कि इनके बीच में एक खास किस्म का ताल्लुक होता है। बुनियादी तौर पर ये जो खानों में बांटी जाती है इन खानों के दरमियान कोई मिसिंग लिंक होता है जिसकी बुनियाद पर इन ऑर्डर के अंदर एक खास किस्म का रब्त और जब्त आप देख सकते हैं सरमायादाराना निजाम के अंदर। हम सरमायादाराना निजाम के अंदर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हम सरमायादारी से कंसर्न कर रहे हैं। अगर आप मजहब को ले लेंगे तो मजहब के अंदर भी इनमें एक रब्त और जब्त दिखाई देगा। तो ये कहना कि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन एग्जैक्टली फंक्शन करती है, ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी को खानों में नहीं बांट सकता, वो अपनी तरजीहात या तायुन में खाने में बांट सकता है, लेकिन इंसान बजाते खुद चूंकि एक बीइंग है जो कि इंटरैक्ट करती है मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स के साथ, तो उनका जो मिसिंग ताल्लुक है वो इंसानी जात का ही जो ताल्लुक है, तो इंसानी जात के जो जो पहलू जिस दायरे के अंदर फंक्शनल होंगे वो के वो बजाहिर एक दूसरे से जुदा जुदा दिखाई देंगे, लेकिन उनको एक यूनिफाइंग रिलेशनशिप होगा जो उन सब दायरों को जो कि बजाहिर एक दूसरे से जुदा जुदा दिखाई दे रहे हैं रब्त और जब्त पैदा करता है। और सरमायादाराना माशरे के अंदर हम इन मुख्तलिफ कदरों के ढांचों में एक रब्त और जब्त देखते हैं और जो कोहेरेंटली फंक्शन करता है, और ये सिर्फ मोरालिटी एथिक्स के डोमेन में नहीं बल्कि आप मीडिया के डोमेन में भी इस कोहेरेंस को देख सकते हैं, आप कलेक्टिव प्रैक्टिस के डोमेन में भी इसको देख, आप कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर भी इस रब्त और जब्त को देख सकते हैं, और इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि उसका जो जबर होता है वो महदूद नहीं रहता टेक्निकलिटीज तक। अब हम जो ये 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 जो बात है खाली के इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ।
ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन की जो बात है इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ये इस तरह करने की सूरत में हम चीजों को जज़ियात में देखते हैं उसको पसंद करते हैं और कुलियात में देखना छोड़ देते हैं।
बज़ाहिर ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये आप जुज़ में देख रहे हैं, हकीकतन हम ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो जुज़ जो है वो एक कुल का ही हिस्सा है, वो हमारी नजर से उझल हो जाता है।
अब मैं शोएब अख्तर को पसंद कर रहा हूँ क्योंकि वो बेहतरीन प्लेयर है, बाकी उसकी लाइफ क्या है मैं उसको नहीं देख रहा।
हाँ नहीं देख रहा, लेकिन आप शोएब अख्तर को वैल्यू नहीं कर सकते उसकी बॉलिंग की बुनियाद पर उस वक्त तक जब तक के उसकी जमालियाती अखदार का उस खास किस्म की तर्ज जिंदगी जो कि ओवरऑल लाइफ स्टाइल है उसके अंदर उस हैसियत को माइनस करके आप उसकी बॉलिंग करने की कैपेसिटी को वैल्यू नहीं कर सकते। मसलन आप कहते हैं कि भाई शोएब अख्तर टेक्निकली एक बहुत अच्छा बॉलर है, तो जब आप लफ्ज अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा बॉलर होने का मतलब ये है कि वो बहुत तेज बॉल करता है। अब तेज बॉल करने का इखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है बज़ाहिर, आप ये एक टेक्निकल बुनियाद है, हर आदमी उस तरह की बॉल नहीं कर सकता, लेकिन फर्ज किया कि एक आदमी बहुत तेज बॉल कर सकता है, लेकिन एक ऐसी माशरत में वो रहता है जिस माशरत के अंदर क्रिकेट को कोई कदर के तौर पर नहीं लिया जाता। तो क्या वो तेज बॉल कराने की सलाहियत जो कि शोएब अख्तर के पास है उसकी बुनियाद पर शोएब अख्तर आइडियलाइज किया जा सकेगा उस माशरत के अंदर? नहीं किया है, उसको पता ही नहीं होगा किसी को कि तेज बॉल करने का क्या ताल्लुक है इससे। तेज बॉल करने की बुनियाद पर इंसान को क्यों मैं वैल्यू करूं? लेकिन तेज बॉल करने की जो वक्त है वो एक ऐसी माशरत में है जिसमें ये पहले से मुतसव्विर है कि उस माशरत के अंदर क्रिकेट की एक वक्त, और उस माशरत के अंदर क्रिकेट کہ کھیل میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی ایک وقت ہے اور اس معاشرت کے اندر کرکٹ جو کھیلتے ہیں ان کو دیکھنے والوں کی بھی ایک وقت ہے اور اس معاشرت کے اندر کرکٹ کو اسپانسر کرنے والوں کی بھی ایک وقت ہے اور اس معاشرے کے اندر کرکٹ سے جو مستفید ہوتے ہیں جو لوگ جو پرسنل جس طرح کے بھی ہوں چاہے وہ ٹیکنیکل ہوں یا نان ٹیکنیکل ہوں یا ایسٹھیٹیکلی ہوں یا ان سب کی بھی ایک قدر اس تمام تناظر کے اندر شعیب اختر یہ کر لیا تو یہ کہنا کہ میں شعیب اختر کو ویلیو کر رہا ہوں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک فاسٹ بالر ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ شعیب اختر کے بارے میں یہ کہتی ہیں بعض بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کہ شعیب اختر کو ٹیم میں شامل کرو اگر نہیں کیا تو ہم اس کو اسپانسر نہیں کریں گے ٹیم کیوں اس لیے کہ وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے وہ ایک سمبل ہے میسکلینٹی کا دوسرا وہ بہت اس وقت دنیا کا سب سے تیز ترین بالر ہے چاہے وہ وکٹ لیتا ہو یا نہیں لیتا ہو دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایڈ میں آتا ہے تو لوگ پیپسی کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیٹس تو ملٹی نیشنل کوآپریشن کا انٹرسٹ ہے کہ شعیب اختر ٹیم میں رہے بعض ملٹی نیشنل تو تین سال کا معاہدہ کرتے ہیں اب آپ انہوں نے معاہدہ کر لیا لیگلی معاہدہ ختم نہیں کر سکتی اس کو تین سال تک انہیں پالنا ہے اب وہ دو سیزن کے بعد وہ بیٹھ گیا تو ملٹی نیشنل کا انٹرسٹ اس میں کہ وہ ٹیم میں رہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پیپسی بیچ تو بنیادی طور پر شعیب اختر کی جو ٹیکنیکل اسکل ہے اس کا اکنامک سٹرکچر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جب شعیب اختر کرکٹ کھیل میں آتا ہے میچ تو اسٹیڈیم میں لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انگلینڈ میں عمران خان کرکٹ کھیلنے کے لیے آتا تھا تو جو برٹش وہ ہے نا رائل فیملی وہ اپنی بیٹیوں کو کمروں میں بند کر دیتے تھے کہ وہ عمران خان کو نہ دیکھیں وہ فزیکلی جو اس کی اپیئرنس تھی جس طرح کی وہ انگریزی بولتا تھا جس طرح کا اس کا ایٹیچیوڈ تھا جو پٹھانوں نے انگریزوں کی بڑی پٹائی کی پٹھانوں کو بڑا انگریز بڑا ویلیو کرتے ہیں ریشلی وہ سپیریئر ریس سے مارشل ریس سے تعلق تو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس کے چکر میں نہ پڑے اس کا مطلب ہے عمران صرف ایک ٹیکنیکلی ویلیو نہیں کیا جاتا بلکہ ایستھیٹیکلی بھی ویلیو کیا جاتا لیکن عمران خان کی وہ جو ایسٹھیٹک ورتھ ہے وہ کیا انڈیپینڈنٹ ہے اس پورے نظام زندگی کا جس میں ایک انسان کو اس لیے آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ گیم بہت تیز پھینکتا ہے تو پہلی بات یہ کہ جو ٹیکنیکلی آپ کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں اس ٹیکنیکل ویلیو کا اکنامک سٹرکچر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اکنامک سٹرکچر کا ایک ایسٹھیٹیکل سٹرکچر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے ایسٹھیٹیکلی ویلیوبل چیز کیا ہے ایسٹھیٹک ایکسپیرینس وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ کو روکتا ہے اپنی طرف زیادہ دیر متوجہ رکھتا ہے تو جس چیز کی ایسٹھیٹک ورتھ زیادہ ہوگی اس وہ آپ کو اپنی طرف زیادہ دیر متوجہ کر سکتا ہے تو اگر اس کی اکنامک ورتھ بھی اس بنیاد پہ پیدا ہو جائے گی نا کہ چونکہ یہ لوگوں کو زیادہ دیر اپنی طرف متوجہ رکھ سکتا ہے لہذا اگر اس ایڈورٹائز کے اندر یہ ماڈل آئے گی جو کہ بڑی خوبصورت ہے تو اٹریکٹ کرے گی لوگوں کو اس ایڈورٹائز کی طرف اس لیے وہ ماڈل کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے اس ماڈل کی ورتھ بھی ہوگی اس ماڈل کو بیوٹیفل فیمس بیکاز آف بینگ فیمس بیوٹیفل بیکاز آف بینگ بیوٹیفل ویلیوبل بیکاز آف بینگ ویلیوبل تو وہ دو کام بیک واک کرے گا ایک کام یہ کرے گا کہ یہ جو انسان ہے یہ ویلیوبل انسان ہے دوسری بات یہ کہ یہ ویلیوبل انسان یہ چیز استعمال کرتا ہے لہذا یہ چیز ویلیوبل ہے یا یہ چیز ویلیوبل تھی اس وجہ سے اس ویلیوبل انسان نے اسے استعمال کیا تو وہ طرز زندگی اندر اختیار کرتے ہیں کہ جتنے خوبصورت چہرے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ یعنی کہ ایسٹھیٹکس جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے کنٹمپرری اکنامک اسٹرکچر کا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ ایسٹھیٹیکلی ویلیو تو کریں لیکن وہ उसका इकोनॉमिक वर्थ या वैल्यू इवैल्यूएशन के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो।
जाहिर है एक आदमी को अरबों खरबों रुपए खिदमत याद कर
क्यों दे रहे हैं,
अगर उसे खरबों रुपए कमाएंगे तो देंगे
देंगे, और वो उसको जब दे देंगे एक आदमी को, जब आप एक खरब रुपए देंगे तो इवेंचुअली वो किसके पास रहेगा, मार्केट में ही रहेगा वो पैसा, वो खा तो सकता नहीं उसको, कितने पैसे खा लेगा वो लगाएगा क्या करेगा, या तो अयाशियां करेगा जिसके नजर में वो लाइफ स्टाइल वैल्यू करेगा जो लाइफ स्टाइल वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे जब ये माइकल जैक्सन ने बड़े अच्छे गाने वाने गा दिए, मशहूर हो गया, तो उसको बड़ा पैसा मिला, इसने एक पूरा आइलैंड खरीद लिया, इसका एक घर पूरे आइलैंड के ऊपर था, सही है,
वो उसको
मेंटेन नहीं कर पा रहा,
मेंटेन नहीं कर पा रहा,
मेंटेन नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा भाई, तो तुमने वो पैसा क्या किया, एक वीरान गुजार जजीरे पे लगाकर तुमने क्या किया, मार्केट को ही सर्व किया था, भूखों खाने के लाया, कालों को काले काले भूखे मर रहे हैं पूरा अफ्रीका, तुम आइलैंड बना के बैठे, तो बताने का मतलब ये कि एक आदमी को जब आप पैसा देते हैं तो वो मार्केट से निकल जाता है, मार्केट में ही जाता, आपको क्या फायदा, लोग समझते हैं मार्केट जब किसी को पैसा देती है तो मार्केट से बाहर, मार्केट में ही रहता है वो, क्योंकि वो खुद ही मार्केटाइज प्रोडक्ट है, वो कोई नॉन प्रोडक्टिव चीज में नहीं इस्तेमाल कर रहा है उस पैसे को, वो कर ही नहीं सकता, तभी तो उसको दिया।
और सर इस अमल में कब से शिरकत करना शुरू कर देता है, कंपार्टमेंटलाइज करना आपने जिंदगी को,
ये तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही इसको
तरफ,
पूरी जिंदगी उसकी इस नौयत की होती है जिसके अंदर वो इस फ्रेमवर्क को आइडियलाइज करना शुरू कर देता है। एक तारिक मैं इस वक्त क्लास में हूँ, क्लास लेके मैं तुम्हें फोन करूँ, तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है बुनियादी तौर पर भी क्या है, ये देता है मोरालिटी ऑफ क्या कहते हैं, इन सब के बीच जो यूनिफाइंग फोर्स है वो है मोरालिटी ऑफ क्या कहते हैं, यानी कि मॉरल, यानी कि ये मॉरल है कि तुम अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करो फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये एक वैल्यू है कि तुम अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करो पैसे कमाने के लिए, ये एक मॉरल चीज है कि तुम अपनी मैथमेटिक्स और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करो फॉर कैपिटल एक्युमुलेशन, और अगर तुम ये नहीं कर रहे, अगर ये तुम नहीं कर रहे, यानी कि तुम अपनी टेक्निक को, अपने हुस्न को, अपनी जहानत को इस्तेमाल नहीं कर रहे कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो, दो तरह के जुर्म कर रहे हो, एक कि तुम अपने ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जाया कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम नॉन प्रोडक्टिव चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट वेस्ट मीन्स दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा काम आप ये करते हैं कि आप ये कहते हैं कि जो चीजें कदर के काबिल हैं, जो चीज प्रेफरेबल है वो तुम प्रेफर नहीं कर रहे, जिस तरह एक मजहबी माजरे के अंदर सुन्नत पे अमल करना एक प्रेफरेबल चीज है, तुम सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे तो तुम कदर और मंजिलत की निगाह से गिर जाओगे ना लोगों के, लोग तुम्हें नहीं वैल्यू करेंगे, तो इसी तरीके से एक सरमायादाराना तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर जो वैल्यू ऑफ कैपिटल को वैल्यू नहीं कर रहा किसी भी जिंदगी के दायरे के अंदर, तो वो डिसक्रेडिट है, उसको उसके ऊपर लान तान होगी, उसकी कंडेमिनेशन होगी, लोग उसको जलील करेंगे, लोग उसको मजाक उड़ाएंगे, लोग उसके खानदान वाले उसका मजाक उड़ाएंगे, और कदर की बुनियाद ये होगी कि तुमने कितना माल कंट्रीब्यूट किया लोगों की अय्याशी में इजाफा करने के लिए और कितना नहीं किया, अगर नहीं कर सके तो इसका मतलब है तुमने पढ़ लिख के बर्बाद, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे रिश्तेदार मुझे कहते हैं तुमने पढ़ लिख के बर्बाद किया, क्यों क्यों क्या, और हम मेरा खानदान तो खाली का ही पता है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मेरे भाइयों को छोड़कर मेरे जो दूसरे मिलने वाले हैं वो कहते हैं ये अजीब आदमी है,
पूरा अपना जिंदगी बर्बाद, बाहर चला जाता, बाहर इंग्लैंड जाके फिर वापस आ गया, वहाँ सब कुछ करवा दिया था, मेरा एडजस्टमेंट सब हो गया। तो वो कहते हैं फजूल काम कर रहा, फजूल काम है ये सब, फजूल एक्टिविटी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी सबसे ज्यादा कीमत कौन पे करेगा? सबसे ज्यादा कीमत मेरी बीवी पे करेगी या मेरे बच्चे पे करेंगे? तो वो कंडेम करना शुरू करेगा। अगर एक खास लेवल की सरजिंदगी में मेंटेन, क्यों? क्योंकि वो दो तीन लोगों को पूरा माशा मिलकर रहनाई कराएगा कि देखो वो आदमी तो इतना मामूली सा पड़ा था, उसने ये कर लिया, उसने तो ये किया था, उसने ये कर लिया, उसने तो ये किया था, उसने ये कर लिया। तो ये क्या करता रहता है ये? इसका मतलब है हड हराम है, हड हराम है, ये घर में पड़ा रहता है, अपने किताब पढ़ता रहता है, लेट इंटेलेक्चुअलाइज करता रहता है। कल को इसका बच्चा बीमार हो जाए तो लाखों रुपए से कैसे इलाज कराएगा? रोज उन्होंने तो करा लिया, हम तो करा भी नहीं सकते। हमारे एक दोस्त है, उसके बच्चे को कैंसर हो गया, तो उसने 1 करोड़ रुपया उसके इलाज कर, पूरा 1 करोड़, 10 रुपए का था, 100 रुपए का था पाउंड, 1 लाख 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 पाउंड, ये तो नहीं क्या 10,000 पाउंड, बारह 1 करोड़ रुपया खर्च। हम तो नहीं कर सकते थे ना, तो वो हमारे जो जाने वाले थे ना, तो भाई देख लो उनके पास था तो उन्होंने कर लिया। मैं कहता हूँ भाई अल्लाह ने जिसकी जिंदगी देनी होगी दे ही देगा, है ना? अगर नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब मैं इस पॉसिबिलिटी पे कि खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, मैं निकल जाऊँ सिर्फ यही करने के लिए, सब कुछ छोड़, इससे कोई दलील नहीं है ना। लेकिन ये कि आर्ग्यूमेंट ये कि भाई तुमने अगर पढ़ाया तो उसके नजर में तुम पैसे कमाओ ना,
वो भी है ना। मतलब ये सवाल जो है कि देखो उसको ये हो गया ये हो गया, ये सवाल भी खास स्ट्रक्चर से उठा है ना। मतलब जिस स्ट्रक्चर में जो है, मतलब ये कि आपके एक दो बच्चे ही होते हैं और आपकी एक ही बीवी होती है, तो ये सवाल भी तो स्ट्रक्चर से उठा। अगर आपके 3-4 बीवियां, 15-20 बच्चे, तो कोई सवाल ही नहीं उठाएगा यार। मेरा एक बच्चा होता है, मेरे पास 25 बच्चे हैं यार, एक मर गया तो क्या होगा? तो स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो रहा है, तो सवाल भी चेंज हो रहा है ना। अगर आपके 25 बच्चे हैं, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, अब आपके पास दो ही बच्चे हैं, तो बोले यार यार ये दोनों का कैंसिल हो गया, फिर क्या करोगे तुम? तो वो मार्टर स्ट्रक्चर जब तब्दील होता है, तो वो सवाल की नौजियत भी उसके साथ तब्दील हो जाती है।
बिल्कुल सही बात
है, इरेशनल एक्टिविटी है ये कि एजुकेशन हासिल करने के बाद अपना एक्यूमुलेट करने के बाद।
अब किस आदमी के, मतलब मेरे आए होंगे 19 बच्चे थे, राजू में रहते होंगे 4 बच्चों का इंतकाल हो गया, हो गया अल्लाह ताला को मंजूर, काफी लंबी है ना, मतलब थोड़ा तब भी काफी है। अगर किसी का एक ही बच्चा और जो आज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना है, तो एक अगर आपकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा भी तो आप 2 करोड़ 3 करोड़ 17 बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मौजूदा जो स्टाइल ऑफ रिसीविंग है, इसमें 17 बच्चे एग्जाम में मेरे हाई स्कूल टीचर थे, उसकी कितनी आमदनी है स्कूल टीचर, 4 बच्चे पढ़े सब फर्स्ट क्लास में, मतलब अपना अपना एग्जाम सब पहले पढ़ लेते हैं, कैसे उन्होंने तालीम हासिल करी होगी सरकारी स्कूलों में। तो इस स्ट्रक्चर में जब आप तैयार कर लेंगे, तो अब अगर किसी का एक ही बच्चा होगा ज्यादा फट जाए, तो उसके लिए वैल्यू है ना, मतलब उसके लिए जो सब कुछ करेगा, यहाँ यार खतरा हो सकता है कि उसको कैंसर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सुना हो जाए, तो तुम करो एक बच्चा पैदा, 17 बच्चे पैदा करो, ताकि सवाल ही पता मुझे।
बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो 17 बच्चे और एक बच्चे और 2 बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मसला है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो तो कैपिटल रैशनल ऑफ द कैपिटल डिटरमिन करता है।
एग्जैक्ट,
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम जो है वो है क्राइटेरिया, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी ना 17 बच्चों में, तो अय्याशी कम हो जाएगी और आजादी कम हो जाएगी, और आजादी और अय्याशी को तो आप कदर का तयन कर चुके हैं, तो फिर आप उस कदर के हिसाब से आप उसको वो करते हैं।
मतलब बच्चे को हर रोज अंडा नहीं मिलेगा, 17 बच्चों को तो नहीं मिलेगा, दाल रोटी मिलेगी, दाल रोटी खाने की क्या जिंदगी, बेकार चीज है। इससे आपकी वो जो है मतलब इंटेक जो है कैलोरी इंटेक पूरी नहीं हो रही,
न्यूट्रिशन लेवल आपका ड्रॉप हो जाएगा, आप एक कमजोर वो पैदा करेंगे नस्ल, और आप एक यू नो, तो बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कि जो वैल्यूएबल चीज है खूबसूरत। एक अभी ड्रामा आ रहा है PTV के ऊपर, उस ड्रामे के अंदर दिखाया कि एक आदमी जो है वो कपड़े की दुकान है, उसका एक बेटा जो है वो किसी खानका में चला गया पीर के पास, और एक बेटा जो है वो CSS कर गया, और एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी नहीं हो सकी, बड़ी है काफी बड़ी इन सब भाई बहनों में, और तीसरी जो बेटी है वो है कॉलेज जाने वाली। तो फिर वो भाई जो यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ था उसने कहा जो मेरी बहन को जो है वो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने हैं, बाप कह रहा था नहीं इसकी शादी कर दूंगा, और उन्होंने कहा नहीं इसकी यूनिवर्सिटी में उसकी वो कर दी एडमिशन दिला दी यूनिवर्सिटी में। क्या था यूनिवर्सिटी में आगे उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो ड्रामा वो ग्रुप था थिएटर ग्रुप उसमें शामिल हुए, थिएटर के ड्रामे किए, फिर उनको थिएटर के ड्रामों से उनको एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो मिल गई एक एड काम करने। तो उन्होंने कहा नहीं ये वो मेरे अब्बा तो तैयार नहीं, अब्बा को एक बदमाश आदमी के तौर पर पेश करते, और भाई जो कि हर चीज की याद दिला रहा उनको एक अच्छे इंसान और पढ़े लिखे और एनलाइटेड आदमी के पकड़े। तो उनके भाई ने उनको कहा नहीं ये तुम्हारा हाथ है, और अगर तुम्हें अल्लाह ने खूबसूरती दी है तो उसे छुपा नहीं कर अपनी बहन को। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भैया वो और खूबसूरती, और फिर दिखाया कि वो जो है उन्होंने वो बहुत नेक और बहुत ही शरीफ और 5 वक्त की नमाजी है, और वो मॉडल गर्ल भी है, और बहुत अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा पढ़ रही है, और जो है वो उन्होंने गाड़ी खरीदी, और ये उनके अब्बा पहले नाराज होते रहे, अब उनके अब्बा जो है वो सबसे ज्यादा आराम वो पहुंचा रहे
हैं गाड़ी में
सकते हैं। नहीं अब्बा नाराज रहते थे और सांप बिच्छू ये वो कहते थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं
असल
नहीं असल चीज इंसान का किरदार है, और उन्होंने अच्छी अच्छी इंसान की तरबियत है, और मैंने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की तो ये तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उनकी अच्छी तरबियत, ये तो एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी शरीफ मॉडल गर्ल है, जाती है अपना ऐड करती है और पैसे लाती है और पढ़ती भी है, और मैं बहन के लिए वो एक जो 12 साल की लड़की जो ड्रामा देख रही है अगर वो देख रही है तो वो ये जो मीडिया का स्ट्रक्चर है जो वैल्यू आपको दे रहा है, मेरी बीवी कहती थी कि ये दिखाएंगे ये कि ये टीवी में जाके बदमाश हो गए, मैंने कहा टीवी के ऊपर बैठकर वो ये कैसे दिखा सकते हैं टीवी में जाके बुलाएंगे,
टीवी तो शराफत का सिंबल है।
तो उसने रियलाइज किया कि हाँ ये कैसे बनते टीवी के ऊपर जाने की वजह से वो बुरी हो गई, जिसका मतलब टीवी पे जितने लोग आते हैं बुरे हो गए तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो एवेंचुअली ये दिखाया कि क्योंकि टीवी तो चलता ही अस्पताल में
मॉडल मॉडलिंग भी वो मॉडल एक्टिविटी
मॉडल एक्टिविटी, यानी कि आप अगर अच्छे हैं तो उसका डराने का जो मोटो था वो ये कि अगर आप अच्छे हैं तो आप कहीं किसी माल में जाए आप बुरे नहीं। फिर दूसरा उन्होंने क्या दिखाया, एक तो ये दिखा दिया, दूसरा दिखाया उनका जो बेटा खानका में चला गया था वहां पर वो लोग चरस बेच रहे, खानका में जो पीर साहब थे असल में वो चरस का कारोबार करते, लेकिन जिस तरह अपनी बेटी को उन्होंने अच्छी तरबियत दी थी अपने बेटे की उन्होंने अच्छी तरबियत दी थी, तो बेटे ने वो कर दिया इसे जाए कि नहीं ये जो तुम करते हो ये गंदा है, चरस का काम गंदा काम, मैं ये नहीं करूंगा। तो जो पीर साहब के गुंडे हैं उनको मारने और कत्ल करने की कोशिश, यानी कि वो जो सिंबल है सैंक्टिटी का आपके ड्रेस भाई वो कोई होगा उस बदमाश होगा वो तो तुम ना दिखाओ ना, और जो सिंबल है हिलासत का उसको तुमने इंटरप्रेट किया कि वहां जाकर
आदमी सही
रहा सही रहा और सही तरह से उसे काम भी करने दिया और इज्जत भी महसूस है इसका आपको महसूस, और यहाँ पर गया और वो सब बदमाश लोग थे और डाकू थे और गुंडे थे और टेररिस्ट है, उन्होंने उसको किया और जब उसने उनको छोड़ दिया तो उसके पीछे पड़ गया उसके। तो ये जो काम हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जो कि वो एजुकेशनली हासिल करता है, उस वैल्यू को देने के लिए आपके पास एजुकेशनल मैकेनिज्म भी है, उसको देने के लिए प्रैक्टिस का मैकेनिज्म भी है, उसके जरिए सोशल मैकेनिज्म भी है, उसके लिए एस्थेटिकल मैकेनिज्म भी है, और ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी कि हॉकी में आप तरक्की नहीं कर सके, हॉकी में तरक्की क्यों नहीं कर सके, इसलिए कि स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिली। हॉकी का एक खिलाड़ी को 20 रुपए पर डे मिलता था और एक जूस का ग्लास, जिस जमाने में आपके वो चैंपियन मिलता था पर डे और एक जूस का ग्लास मिलता था। हॉकी के जो आपके ओलंपियंस थे ना, ये सारे ओलंपियंस जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते वो लोग थे जिनको 20 रुपए रोज से मिलते। अच्छा, और आपने क्या किया, नहीं स्पॉन्सरशिप लेके आने शुरू कर दी हॉकी, तो उसके नतीजे में वो, तो उन्होंने कहा नहीं अब स्पॉन्सरशिप का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये फिजिकली वीक हो जाए, तो फिजिकली थक जाते हैं इस वजह से ऑक्सीजन ट्रक से आने के
बाद। मॉडिफाई तो बहुत ज्यादा करते
हैं, ऑक्सीजन को मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं वो अपने हिसाब से। पहले वो एक बार वो चक्कर लगा देते ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती थी, अब वो खाओ भी खत्म कर दिया होगा। यानी कि वह बॉडी ये बॉडी प्ले खेलता था, बॉडी प्ले का खेलना जो है वो हॉकी के अंदर फाउल ही नहीं रहा। तो बताने का मतलब ये कि आप ये बताते हैं कि हॉकी में आपके हार जाने की बुनियादी वजह ये है कि आप इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड हो। असल में कामयाबी और नाकामी के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कैपेसिटी, कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी, और वो कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी आपको जिताती है चीजें, और अगर वो नहीं है तो नहीं होता। तो आप देखेंगे कि दबाव दायरों का जो मिसिंग लिंक है तीसरा है ना, वो मोरियलिटी ऑफ कैपिटल स्टैब्लिश करना और उस के अलावा कोई दूसरा वैल्यू स्ट्रक्चर पनप ही नहीं कर सकता। कोई दूसरा वैल्यू स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनली क्वेश्चन होता है। अगर पंचायत से आप एक ऐसा अर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आप देते हैं जिसके वजह से इंसान की कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, तो उसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर मानने से ही लोग इंकार करते हैं। लिहाजा एजुकेशनल स्ट्रक्चर की जो मीनिंगफुलनेस है वो डिटरमिन होगी इस बात से कि उसके नजर में कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है या नहीं, वरना वो सर्वाइव नहीं कर। इसी तरह आप कोई इदारा खोलते हैं और वो इदारा अगर कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो चलता। इसी तरह से आप कोई एस्थेटिकल पोजीशन लेते हैं, यानी कि अच्छा आर्टिस्ट कौन होगा जिसकी पेंटिंग महंगी बिकेगी, अच्छा आर्टिस्ट वो होगा जिसका गाना ज्यादा लोग खरीदेंगे, यानी कि अच्छा आर्टिस्ट किसे कहेंगे सालगा जिसमें जिसका जो कैसेट है सबसे ज्यादा बिके, जिसने ज्यादा क्या सीडीज बिकी बड़ा वो आर्टिस्ट होगा। सही है, आप इंडिया के अंदर वो जो अवार्ड मिला उसको मिला ऋतिक रोशन को, क्यों ऋतिक रोशन, हाँ ऋतिक रोशन क्रिश उसने एक फिल्म बनाई जिसमें सुपर मैन बना, तो क्यों इसलिए सबसे ज्यादा फिल्म देखी है, सबसे ज्यादा फिल्म देखी है, सबसे ज्यादा बिजनेस में किया, इसलिए सबसे अच्छी एक्टिंग। तो बताने का मतलब ये कि आप ये देखेंगे कि इसमें एक पैटर्न है और वो पैटर्न जो है उसमें एक खास किस्म की एब्सोल्यूटनेस भी है और एक खास किस्म की रिलेटिविटी भी है। रिलेटिविटी ये है कि चूंकि आपको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा सरमाया फुटबॉल खेल के जमा होगा, सबसे ज्यादा सरमाया किसी गाना गाते होगा, सबसे ज्यादा सरमाया जॉइंट स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन से होगा, सबसे ज्यादा सरमाया आम बेच कर होगा, सबसे ज्यादा सरमाया जो है वो कोई फूड आइटम
ویٹ کے حق میں ہوگا. لہذا آپ کہیں گے کہ دیکھیں اس میں نیرنگی ہے, ڈائیورسٹی ہے. ڈائیورسٹی کیا ہے کہ کوئی میوزک کے تھرو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی ایکٹنگ کے تھرو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی فلم میکنگ کے تھرو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی کلائمبنگ کے تھرو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی باکسنگ کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی جو ہے سائنٹیفک انوینشن کے تھرو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی کتاب لکھ کے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی کہانی قصہ سنا کے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. لیکن ان سب کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ کیپٹل. تو ریلیٹیوٹی بھی ہے ایبسولوٹ میں, تو دونوں چیزیں آپ کی پوری کر دی نا. کیا آپ چاہتے ہیں نیرنگی پن ہو, نیرنگی پن ہے, لیکن ایک ان میں قدر کا ایک ہی کٹنے کا پیمانہ ہو, ایک ہی کرنا. جس طرح کسی بھی تحریر کے اندر قدر کو ناپنے کا بنیادی پیمانہ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے ٹیکنیکل, ایسٹھیٹیکل, اکنامک اور مورل, وہ سپیریئر ہوتا ہے جو کہ موریلٹی کے لیے فاؤنڈیشن اسٹون ہوتا ہے. اور وہ ریالٹی پرنسپل جو ہوتا ہے وہی خیر کا تصور جو ہے اسی خیر کا تصور اسی ریالٹی پرنسپل سے اخذ کرتا ہوتا ہے. تو وہ ایبسلوٹ ہوتا ہے اس سینس میں کہ وہ متاثر نہیں ہوتا مختلف قسم کی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ. لیکن اس میں ریلیٹیوٹی کیا ہے کہ وہ کیپٹل ایکومولیشن سب سے ایفیشنٹلی کس فریم ورک کے تھرو ایکومولیٹ ہوتا ہے یہ ہم الٹیمیٹلی نہیں بتا سکتے, اس لیے اس میں یہ ڈائیورسٹی.
اس لیے یہ ہفتے آپ نے کہا تھا کہ یہ اس پر ڈبیٹ کریں گے جیسے کہ یہ جو مورل مورلٹی کا جو مطلب سورس ہے وہ کیا ہے, مطلب کیپیٹلزم میں مورلٹی کا سورس کیا ہے اور انڈیویجل لائف میں ایک آدمی کی اپنی انڈیویجل مورلٹی ہوتی جس کے تحت وہ کشمکش میں اپنے ڈسیشن کرتا رہتا ہے, مطلب یہ ایبسولیوٹلی سرمائے کا غلام نہیں بن جاتا. وہ جو ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سانچوں اور سانچوں کے باوجود اپنا ایک اپنا سانچا بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس فرق کی جو ہے مورلٹی وہ کہاں سے آتی ہے اور اس سسٹم کی مورلٹی وہ کہاں سے آتی ہے؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محض ایک خیالی ہے مطلب, لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ایک کلاس ہے مورلٹی وہ دائرہ ہے جس میں میرا تعلق مجھ سے ہوتا ہے اور ایتھکس کہتے ہیں میرا تعلق دوسروں سے, یعنی کہ ایتھکس کے اندر میں دوسروں کو جواب دیتا ہوں, لہٰذا دوسروں کے حوالے سے میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں. عام طور پر ایتھکس اور مورالٹی کو ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ ہم معنی نہیں ہے بلکہ یہ ان میں انڈرسٹینڈنگ یا ایٹیچیوڈ میں فرق ہے. ایتھیکل ایٹیچیوڈ اور مورل ایٹیچیوڈ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایتھیکل ایٹیچیوڈ میں میں اپنا تعلق دوسروں سے جوڑتا ہوں اور اپنے وجود کو لیجیٹیمائز کرتا ہوں ان تعلقات کے اندر جو میرے ارد گرد کے انسانوں اور اشیاء کے ساتھ ہیں, لہٰذا میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں ان پرٹیکولیرٹیز کے اندر جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں. موریلٹی کے اندر میرا تعلق مجھ سے ہوتا ہے, ایتھکس میں جواب دیتا ہوں اپنے سے باہر جس سے ہوتا ہوں, ایتھیکل ایٹیچیوڈ اور مورل ایٹیچیوڈ میں جواب دے ہوتا ہوں اپنے آپ کو. اب پہلے ایتھیکل ایٹیچیوڈ پہ آ جائیں. ایتھیکل ایٹیچیوڈ میں مجھے جب میں پیدا ہوتا ہوں تو مجھ سے پہلے ایک معاشرہ موجود ہوتا ہے, لہذا وہ معاشرہ مجھے بچپن سے لے کر کسی ایک خاص بلوغت کی عمر تک پہنچنے میں ایک انٹرنیشنل رول پلے کرتا ہے. اور وہ انٹرونشنسٹ رول جو ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر فنکشنل ہوتا ہے کہ مجھے میں ایک معاشرے پیدا ہوا اس میں میرے ارد گرد کچھ لوگ تھے اور میں نے جب زندگی کو پریکٹس کیا تو مجھے کچھ چیزوں پہ سزا دی گئی, کچھ چیزوں پہ مجھے سراہا گیا, کچھ چیزوں پہ معاشرہ نیوٹرل رہا, تو میں نے
कुछ एरियाज अपनी जिंदगी में तय किए कि ये एरिया प्रेफरेंसेस का है, व्हाट सोसाइटी डिमांड्स मी टू डू, व्हाट सोसाइटी वांट्स मी टू डू, दैट इज द एरिया ऑफ प्रेफरेंसेस। एक मुझे एरिया पता चलता है एरिया ऑफ प्रोहिबिशन, व्हाट सोसाइटी डज नॉट वांट मी टू डू, जो सोसाइटी नहीं चाहती कि मैं जो सोसाइटी नहीं चाहती कि मैं अदा करूं ना या मैं करूं, वो एरिया प्रोहिबिशन का। और एक एरिया पर्मिसिबिलिटी का जिसमें मैं कुछ भी करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माशरे में। ये मुझे पता कैसे चलता है, थियोरेटिकली नहीं बल्कि बाय दी पार्टिसिपेशन इन दी सोशल लाइफ मुझे पता चलता है और मैं पार्टिसिपेट करता चला जाता हूं और पार्टिसिपेशन के थ्रू मैं इन एरिया का तय करता हूं। लिहाजा जब तक मेरा शऊर पुख्ता होता है उस वक्त तक मैं उन एरियाज को पहचान देता हूं और उन एरियाज के अंदर फंक्शनल हो जाता है मेरा शऊर। और चूंकि सब उन चीजों को किसी न किसी सतह पर बरत और परख रहे होते हैं लिहाजा वो ये समझते हैं कि सब कर रहे हैं तो मेरा करना भी आसान है। अगर सब कर नहीं भी रहे तब भी सब लोग वैल्यू तो इसे ही कर रहे हैं। देखें वैल्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग वो करें, मतलब ये कि सब लोग झूठ नहीं सच नहीं बोल रहे, लेकिन सच बोलने वाले को माशरा वैल्यू करता है, चाहे उस माशरे में सच बोलना जितना मुश्किल होता चला जाएगा सच बोलने वाले की कदर उतनी बढ़ती चली जाएगी। बल्कि वो हमारे साथ कहते थे कि जब माशरों के अंदर इंसानी कदरें पामाल हो जाती हैं तो फराइज नेकियां बन जाती हैं, यानी कि जो चीज फर्ज है अब फर्ज अदा ही नहीं कर रहा है, एक आदमी अपना फर्ज अदा कर रहा है तो लोग उसे नेक समझना चाहिए, नमाज पढ़ना कोई फर्ज है ना वो तो सभी पढ़ना चाहिए, मुनाफिकीन तक पढ़ते थे नमाज पर है ना, लेकिन ये कि वो नेकी का पैमाना थोड़ी था, नेकी का पैमाना तो उससे बुलंद था क्योंकि ये तो सब कर रहे हैं, अब लोग नमाज नहीं पढ़ते, अब जो नमाज पढ़ रहा है उसे डेफिनेटली लोग समझते नहीं चाहिए, हालांकि वो फर्ज है ऊपर थोड़ी उठ रहा है वो,
कम अज कम इतना जो आपको करना ही है।
हाँ तो वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो एथिकल एटीट्यूड होता है ना इसको इख्तियार करना आसान होता है, क्यों, इसलिए इसमें कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती और ना मुझे कोई खुमियाजा भुगतना पड़ता, क्यों, क्योंकि माशरे में ये अगर मैं करूंगा तो माशरे में सदर और मंजिलत की निगाह से देखा जाऊंगा तो कम से कम ये बेनिफिट तो मुझे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये मुमकिन है कि अखलाकी मेयारात जो आपके माशरे के अंदर मजा कर लिए गए वो झूठे हों, गुमराहकुन बातिल, लेकिन चूंकि आपके माशरे में कदर और इज्जत की निगाह से देखा जाता है तो ये मुमकिन है कि आप उनको खैर समझ के करते हैं। तो आप एक मॉरल क्वेश्चन रेज करते हैं कि देखो भाई ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है भी कि नहीं, ये सवाल उठाने के लिए आपको तीन चीजें आपके अंदर आपको पता होना चाहिए कि खैर क्या है, तभी तो आप सवाल करेंगे खैर जिसे मैं कर रहा हूं ये खैर है भी कि नहीं। दूसरा आपके अंदर ये सलाहियत हो कि उस खैर को जो कि आप थ्योराइज कर आर्टिकुलेट कर सकें अंडरस्टैंड कर सकें। तीसरी आपके अंदर करेज हो कि आप उसे बरत सकें अपनी जिंदगी में, करेज हो आपके अंदर, सलाहियत हो उस खैर को एक्सप्लिकेट करने की और अंडरस्टैंड करने की, और पहली चीज खैर का आपके पास कोई तसव्वुर मौजूद हो। ये काम आप इसलिए करते हैं, नहीं करते कि लोगों को आपको खुश करना है, ये सवाल आप इसलिए उठाते हैं कि आप ये समझते हैं कि खैर मेरी वजूद का एक जुज्बे लायक, और मैं ये काम इसलिए नहीं करता कि लोग मुझे अच्छा समझें, ये काम मैं इसलिए करता हूं कि मैं ये मुझे करना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि सोसाइटी इसके बुनियाद पर मुझे वैल्यू करे या डिसवैल्यू करे। ये एक बहुत ही मुश्किल पोजीशन है, ये एक आसान पोजीशन नहीं। बुद्धा ने जब ये फैसला कर लिया
कि ये जो कर रहा हूँ मैं ठीक नहीं है, तो इसमें सबसे पहला ये समझ गया ये सब मैं छोड़ देता हूँ, ये ठीक तो नहीं है, उसने छोड़ दिया, बादशाह छोड़ दिया, मजाक नहीं होता, ये मजाक नहीं होता कि एक आदमी बादशाह हो, प्रिंस हो, और वो सब छोड़ के पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठ गया, पीपल के दरख्त के नीचे बैठा बैठा रहा, बिहार में एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ कर उसने वहां से मेडिटेट करना शुरू किया, तो उसके लिए अंदर सलाहियत हो कि जो वो सोचता है उसको थियोराइज करके उसने बयान कर दिया लोगों के सामने, और फिर प्रैक्टिस की उस ख्याल के मुताबिक, बयान नहीं किया बल्कि अपनी जिंदगी पर उसको अप्लाई कर दिया, और बड़े बड़े उसने वॉरियर तब्दील कर दिए, यानी कि अशोक जो था वह बुद्धिस्ट हो गया बाद में, यानी कि बुद्धा से कन्वर्ट किए बगैर उसके जो जानशी थे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, अशोक जब जन डर के फाते होता था उसके सामने से गुजरते थे बुद्ध, तो वो कहता था कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो, किसके सामने सर झुकाते हो, तो वो कहता था हमारा सर तो हमेशा झुकावा ही होता है, तो अशोक कहता था कि मेरी तरह जिंदगी गुजारो वॉरियर की तरह हमेशा सर उठा रहे, लेकिन वो उसी की फौज के हाथों वो बच्चा खत्म हो जाता है, जिस बच्चे के को बचाने आया होता है तो वो तब्दील होता, अपने ऊपर मिट्टी उगाड़ लेता अपने सर पे, वही सर जो उठाया हुआ था झुका लेता, तो पूरी जिंदगी फिर बुद्धिस्ट बन के उसने गुजारी, यानी कि दूसरी सलाहियत है कि जब अपने ऊपर वो आप मुसल्लत करते हैं उस खैर को, तो दूसरे लोग उससे मुतासर होते हैं, तो मॉरल डिसीजन लेना एक बहुत मुश्किल डिसीजन है, क्यों, क्योंकि मुमकिन है कि आपका मॉरल डिसीजन सोसाइटी के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के खिलाफ हो, दुनिया में जितने पैगंबर आए वो सब मॉरल पोजिशन लिए, उसी सोसाइटी में पले बढ़े लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया सोसाइटी की वैल्यूज और एक दूसरी वैल्यू, उनके पास सोर्स था रेवलेशन उसकी दुनिया, इनके खैर का एक सोर्स क्या हो गया रेवलेशन, कि रेवलेशन की बुनियाद पर उन्होंने अपना खैर पेश, मोरालिटी का एक और सोर्स रैशनैलिटी होती है, कि रैशनैलिटी की बुनियाद पर आपने रिजेक्ट कर दिया उस तमाम वैल्यू स्ट्रक्चर को और कोई दूसरा वैल्यू स्ट्रक्चर, इसमें आपने अपने अंदर झांका, अपने अंदर झांका और अपने अंदर से निकाला खैर, यानी कि वॉट इज गुडनेस, गुडनेस इज बाउंडेड बाई योर ओन सब्जेक्टिविटी, आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी का रिफ्लेक्शन, या फिर आपको विज्ञान हुआ कि ये सब ठीक नहीं है और ये ठीक ये है जो मेरा विज्ञान, तो यानी कि मॉरल डिसीजंस के अंदर जो जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि चूंकि आप माशरे को जवाब दे नहीं होते, अपने आप को जवाब दे होते, इसलिए मुमकिन है कि आप अपने किसी अहमकाना ख्याल को मोरालिटी समझ करना शुरू करें, बहुत सारे लोग अपनी बदमाशी और बदकिरदारी को मॉरल समझ के करना शुरू कर देते, जैसे गुरुजी का बेटा है वो होमोसेक्सुअल है मॉरली कहता है, क्योंकि मेरी दांत का जो खला है वो औरत पुर नहीं कर सकता, उसकी दांत का खला मत पुर कर, इसे वो इंटेलेक्चुअलाइज करता है और कहता है मैं मॉरली मत से शादी की। अब सवाल ये है कि हर वो चीज जो आप अपनी इंडिविजुअल कंसेप्शन और गुड की बुनियाद पर एस्टैब्लिश करेंगे वो मॉरल हो जाएगा या नहीं, एक एक्ट्रेस उसके माँ बाप ने उसको इनकरेज किया फिल्मों में जाने, माँ इनकरेज करके लिए बाप को पता नहीं चला, बाप को पता चला, मुझे नहीं पता उसका बाप है लेकिन ये क्यों क्या, इसलिए बाप ने मना किया, तो बाप ने मना किया कि नहीं तुम मैं नहीं जाऊँ, तो उसने जो है वो जिद्दोजहद की और माशरे ने कानून में उनकी मदद और कामयाब एक्टर बन गई,
अब वो अकेली रहे और वो कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से, लेकिन मैंने ये एक्टिंग करने का फैसला मॉरल बुनियादों पर, ये मेरा है मॉरल डिसीजन, है ना। तो हर वो डिसीजन जो मैं कर लेता हूँ मॉरल हो जाता है या नहीं होता है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पोजीशन। एक ग्रुप ये कहता है कि हर वो डिसीजन जो आप लेंगे अपनी इंफिरादियत को मुतमईन करने के लिए वो मॉरल नहीं, वो मॉरल सिर्फ उस वक्त होगा जो कांट की पोजीशन है, वो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब वो रैशनल है। और रैशनैलिटी रैशनल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? रैशनल अगर होगा तो वो यूनिवर्सलाइजेबल होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो यूनिवर्सलाइजेबल होगा। बर्सा की और हटसन की, हार्टमैन की, मूर की पोजिशन ये है कि खैर वो होगा जो कि बुजदान के जरिए पता चलता है, इंट्यूशन पर। जिस तरह गंदी चीज को देख के तुम्हें घिन आती है, उस तरह गैर अखलाकी चीज को देख के भी तुम्हारे अंदर एक रिएक्शन, वो क्या है? तुम्हारा मॉरल इंट्यूशन, उसके ऊपर लग गया क्या? उसके ऊपर लबैक तुम कहोगे तो तुम कामयाब। तीसरा ग्रुप ये रहता है,
ये जो मतलब इंट्यूशन जो है, मतलब जो बात है, तो क्या इंसान जो है हमेशा जो है हालत कितनी पर होता है, ये वो गंदी चीज को देख कर जो है मतलब ये नहीं खाएंगे?
वो ये कहता है बायोलॉजिकल इंट्यूशन या इंस्टिंक्चुअल इंट्यूशन जो होते हैं उनकी तरफ आप किसी को दावत नहीं दे सकते। मसलन ये कि आपको खून को देख के घिना और आप उल्टी कर दे, वॉमिटिंग हो जाती, लेकिन मुझे नहीं होती, तो आप ये नहीं कह सकते आपको भी होनी चाहिए। और अगर पड़ गया तो मुझे तरबियत दो और समझाओ कितनी गंदी चीज होती है, लेकिन अगर मुझे उससे घिन नहीं आती तो मुझे नहीं आती, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मॉरल इंट्यूशन वो होता है जिसकी तरफ आप दावत दे सकते हैं कि बच्चे को जब एक इंसान अजियत देता है तो तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तो मॉरल इंट्यूशन वो के इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन उसे जगाया जा सकता है दूसरे के अंदर। क्यों? क्योंकि बाद बहुत सारे इंट्यूशन ऐसे कहते हैं कि हम सबका सोर्स एक ही है, हमें एक ही हकीकत से निकले हुए हुए हैं, लिहाजा हमारे दरमियान इश्तराक मुमकिन है इस खैर के तसव्वुर के लिए जो कि हम विजदानी तौर पर हमारे पास मौजूद है। अब इसमें इंट्यूशनिस्टों में मुख्तलिफ पोजिशन है, जैसे मूर ये कहता है कि इंट्यूशन की बुनियाद पर तुम्हें पता चल जाता है खैर क्या है, और जो खैर होता है वही अदल भी होता है, वही राइट भी होता है। व्हाट इज गुड इज इफ इट इज इंट्यूटिवली नोन गुड देन इट मस्ट बी जस्ट देन इट मस्ट बी राइट। तो इंट्यूशन की बुनियाद पर तुम्हें पता चल जाता है खैर क्या है, और जो खैर होता है वही अदल भी है, वही ठीक भी है, वही अच्छाई भी है, सब कुछ है।
ये भी लाइट होता है, ये हर एक का इंट्यूशन अलग अलग होता है, और ये क्या आया मतलब इंसान जो है हालत फितरत में होता है, लिहाजा सबका इंट्यूशन एक ही होता है।
इंट्यूशन हालत फितरत से मुतासर नहीं होता, आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी मुतासर नहीं होती आपकी एक्सपीरियंस होती है इंट्यूशन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैबिट है। अगर एक इंसान अपने हवा से कमजा को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अकल फंक्शन नहीं कर सकती, वो नहीं इस्तेमाल कर रहा अपनी अकल, लेकिन जब अकल इस्तेमाल करेगा तो अकल उसको उसी तरह मदद देगी जिस तरह फैकल्टी बेस्ड जो थियोरेटिकल एनालिसिस होता है उसमें ये कहा जाता है कि वो स्पेसिफिक नहीं होता आपके एक्सपीरियंस, लेकिन जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है इस क्लेम के को सपोर्ट नहीं करता, वो इतराज है वो हम देखेंगे। हार्टमैन ये कहता है کہ انٹیوشن کی بنیاد پر تمہیں یہ کبھی نہیں پتا چلتا کہ خیر کیا. انٹیوشن کی کیٹیگری یہ نہیں ہے. انٹیوشن کی بنیاد پر تمہیں یہ پتا چلتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ خیر ہوگا ضروری نہیں ہے. سم ٹائم رائٹ اینڈ گڈ ڈز ناٹ میچ. مثلاً ایگزامپل وہ دیتا ہے کہ اگر ایک خاندان کے لوگوں کو کوئی پکڑ لے ڈاکو اور کہے کہ ان میں سے کسی ایک کو گولی مار دو ورنہ میں سب کو گولی مار دوں. اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو گولی مار دو ورنہ میں سب کو گولی مار دوں اور آپ اپنے آپ کو نہیں مار دوں. فرض کر لیتے ہیں وہ ایک آنےسٹ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہیں کہ نہیں میں کسی کو نہیں ماروں گا, سب مر گئے تو یہ ایک گڈ ڈیسیشن ہوگا یا رائٹ ڈیسیشن؟ وہ کہے گا فرض کیا تم کسی ایک کو گولی مار دیتے سلیکٹ کر, تو کہتا ہے اٹ از رائٹ بٹ اٹ از ناٹ گڈ. اس گیون سچویشن میں یہی کر سکتے. جس طرح بول گیا تھا نا جنید بغدادی نے منصور کو جب پھانسی کی سزا دی چوکا بدل دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہا ہے لیکن جو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں ان کا حال اور مقام مجھے پتا ہے لیکن دوسرے کو تو نہیں پتا. اور کل کو کوئی اور کھڑا ہو جائے گا تو اس کو سزا دینے کی کیا دلیل ہوگی میرے پاس؟ کیا میں کھڑا ہو جاؤں؟ میں کہوں میں ہوں. ہاں جنید کو تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ وہاں سے یہ انتہائی بدماش آدمی ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن منصور حلاج جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ فنا پلّہ ہو گیا, یہ تو بدماش ہے انسٹرومینٹلائز کر رہا ہے. تو مجھے کس بنیاد پہ سزا دے گا اور اس کو کس بنیاد پہ چھوڑ دے گا؟ جو ورڈ تو دونوں ایک ہی ادا کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہا ہے انالت, میں بھی کہہ رہا ہوں انالت. انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا خیر جو ہے آشکار کر دیا, لہٰذا شریعت کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے, تم چھوڑ نہیں سکتے. نمسکار جی. لیکن کیا منظور سے کہا ہے جنید برداری سے پوچھا ہے کہ تم نے ٹھیک ٹھیک کیا؟ ٹھیک ہے خیر ہے یہ خیر ہے. لیکن لا کے دائرے میں جو چیز آ گیا آ گیا. لا کے دائرے میں جب کوئی آ گیا تو پھر تو گیا. اگر وہ عورت جو تھی جس نے بنا کیا اور دوسرے طرح کے بعد آ کے بتا دیا میں نے تو انہوں نے منہ پھیر لیا, پھر دوسری طرف آئی تیسری طرف آئی تو انہوں نے کہا بچے کا کچھ کہا لیا. پتا چلا اس کو تو پریگنینٹ ہے. انہوں نے کہا چلے بچہ پیدا ہونے تک محفوظ کیا. بچہ پیدا ہو گیا انہوں نے کہا چلو سزا کیا؟ وہ کہتی تھی آپ سزا کا. انہوں نے کہا نہیں ابھی دو سال بچے کو دودھ پلا, پھر اس کو سزا دی. اس کا خون کسی کے کپڑوں پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ریلیز ہونے کا نہیں پاک. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر پاک ہونا اور پروفٹ کہہ رہا ہے تو معاف کر دینا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیسیشن لیتے ہیں لیگل پلین کے اوپر وہ جس ڈومین آف لائف کے لیے ہے وہ دس ورلڈلینس ہے. اور دیٹ ورلڈلینس پر تو پروفٹ جو ان کو ویلیو کر رہے ہیں وہ دس ورلڈلینس پہ نہیں کر رہے, دیٹ ورلڈلینس پہ کر رہے نہیں. اور سہروردی کا بھی یہی ہے. سہروردی کو صلاح الدین کو جب پتا چلا کہ سہروردی اس قسم کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بھائی جا کے دیکھو کیا کیا کر رہا ہے. جو صلاح الدین کا بیٹا ہے اس نے اس کی گفتگو آ رہا تھا پڑھا لکھا تھا, اس نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے لیکن یہ کہ دل یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کوئی برا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو بچاؤں کس طرح, کیونکہ غلامہ نے شکایت کی تھی صلاح الدین, وہ تو واریئر آدمی تھا بادشاہ تھا.
उसने भेजा था बेटे को जाके उस मसले को खत्म ठीक कर। उसने कहा कि भाई मैं खत लिखा बाप को कि भाई ये मसला है और ये समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं मजबूब है तो छोड़ दो, अगर मजबूब नहीं है तो कतल कर। मजबूब है स्टैब्लिश है मजबूब तो बेटे ने फिर भी बाप के मशवरे पर उन्होंने कतल नहीं किया। उसने कहा भाई कुछ कलमा पढ़ ले तो मुसलमान है तो कतल नहीं हो सकता, खबारों की लिखानी हो तस्दी हो मेरे कल तो कल से पता नहीं है तस्दीक कर दे जबान से छोड़ दूंगा चला जाऊ, वो नहीं कतल करना है करवाना चाहिए। अब वो लाई ला ही बोले यार लाई ला, इल्लल्लाह भी तो बोले इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं इल्लल्लाह नहीं बोले तो उसने हो गया मारो की लड़ गई गर्दन कटी और फिर उसने इल्लल्लाह शोरबंदी है वो यही कहते हैं। अब मुझे नहीं पता सही है कि गर्दन कटने के बाद इल्लल्लाह तो बताने का मतलब ये है कि वो शेर कहते हैं कि नमाज आशिका व मेहराब नमाज वाहिदा व मेहराब व मेंबर नमाज आशिका बरदारे दीदम दार पे फर्क करता है। लेकिन आम आदमी के लिए क्या ये राइट है या गुड है तो कहेगा भाई इट्स राइट अब क्या करता हूँ इसको डिसीजन तो स्टेट चलानी है भाई सब खड़े हो जाएंगे क्या करेगा वो स्टेट अनार्की फैल जाएगी तो स्टेट चलानी है तो जुनेद ने छोड़ा नहीं है। और दाता साहब ने भी मंसूर अल्लाह जो गुमराह सूफियों में रखा कश्मीर माजी के अंदर ये जो है अपना हाल और मकान जाहिर कर लिया तो हर आदमी के लिए थोड़ी होती है वो चीज तो प्राइवेसी ऑफ नॉलेज। तो इंट्यूशन का एक डिलेमा है इंट्यूटिव नॉलेज प्राइवेट होती है। अब प्राइवेट नॉलेज की बुनियाद पर पब्लिक एजुकेशन तुम कैसे ले सकते हो दैट इज द मेजर प्रॉब्लमेटिक एरिया। तो मुसलमानों के अंदर सूफिया को कटा गया जिस पैमाने में वो थी सुनना और कुरान वो तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पर मौजूद थी तो प्राइवेसी ऑफ एक्सपीरियंस विल बी जज by something which is objectively there सुनना या फिर कुरान अगर उससे नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो इसका मतलब है प्राइवेट एक्सपीरियंस में गुमराही के इम्कान है। जैसे अल्लामा इक़बाल मैंने यही कहा था ना भाई डिस्टिफाई कर दिया उन्होंने पूरी के पूरी इस्लामी इल्मियत को उन्होंने इंट्यूशन के अंदर इंट्यूशन थोड़ी हो प्रॉफिट का एक्सपीरियंस इंट्यूटिव एक्सपीरियंस नहीं होता एक बींग होती है जिसके साथ कन्फ्रंट करते हैं। जिब्राइल इज नॉट एन इंट्यूशन it is a being, he is a being and he is confronting with God, he is confronting with prophet maujood hai wo. So important baat ye hai ki intuition aur rationality dono ke andar problem ye hai ki aap apna nafs kisi aur ke aage pesh nahi karte aap apna nafs apne hi aage pesh karte hain isliye khatra rehta hai ihtimal rehta hai ki aap rational mistakes bhi kare aur aap intuitive mistakes bhi ye khatra rehta hai
का मतलब जो मतलब इंट्यूशन और मतलब इंट्यूटेंस है वो क्या मतलब आलमगीर होती है फलसफे में अगर नहीं या परसेंट टू परसेंट डिफरेंट होती
है नहीं इंट्यूटिव एक्सपीरियंस रिवर्सलाइजेबल होता है
कहते हैं इज इट पॉसिबल
के वो ये कहता है कि दुनिया में जब भी किसी इंसान का जुल्म होता है किसी भी तहजीब से वो ताल्लुक हो आपको बुरा लगे
आगे बढ़ा नहीं होता
वो कहेगा कि इखलाकी सदा से बुराई नहीं ही विल फील शेम फखर नहीं करेगा फखर नहीं कर पाएगा क्यों इसलिए कि वो खुदा ने उसे बनाया है या ये बर्कशा ये कहता है बर्कशा को मतलब कहते हैं कि वो बड़ा इनोवेटिव था अल्लामा का बर्कशा ये कहता है हर आदमी इंट्यूट कर सकता है लेकिन हर आदमी के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि अपने इंट्यूशन को परख सके तो उसे क्या करना चाहिए जो जबरदस्त जिनको इंट्यूशन है उनके इंट्यूशन को फॉलो करें ये बर्सा कहता है। जैसे क्राइस्ट का इंट्यूशन है तुम्हें नहीं हो सकता उस सदा का इंट्यूशन तो तुम क्राइस्ट को फॉलो करें सुकरात की सदा का इंट्यूशन तुम्हें नहीं हो सकता सुकरात को फॉलो करें दो कामयाब अथॉरिटेरियन हो जाता हो तो
अगर फर्ज कर लेते हैं हम कि कोई बड़ा जैसे बुधा के इंट्यूशन, तो क्या बुधा के जो इंट्यूटिव पॉस्चर में ना, जिस जो इंट्यूशन जिस पॉस्चर में हुआ है, उस पॉस्चर में अगर बैठ जाए तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जिस बुधा के जिस पॉस्चर में आप बैठेंगे ना, उस पॉस्चर का आपके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये कौन कहते हैं? बुद्धिस्ट कहते हैं। तो अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अमरीका के अंदर जो 17% पागल है, उनका ख्याल है कि वह आजादी था 17%। ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको 17% पागलों का ये ख्याल है कि वह आजादी था। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या दलील है इसकी, तो वो कहते हैं मुझे इंट्यूशन हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? इंट्यूशन क्योंकि प्राइवेट होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंट्यूशन को रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं। आपको इंट्यूशन हो रहा है और कौन जानता है? आप खुद ही जानते हैं, मुझे तो हो नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि तुम्हारा इंट्यूशन गलत है? चूंकि मैं उसको साबित नहीं कर सकता ना सही ना गलत, लिहाजा या तो मैं उसे मानूं या मैं एक दूसरा इंट्यूशन उसके मुकाबले में पैदा करता। अगर फर्ज किया कि हम मान लेते हैं कि वो 100 पागल हैं अमरीका के अंदर, 17 पागल ये कह रहे हैं कि आगे पीछा है, और 17 के 17 को इंट्यूशन हो रहा है, तो इनमें से कोई एक ही थियोरेटिकली ठीक है, बाकी तो 16 गलत है, 16 को गलत इंट्यूशन हो रहा है। लेकिन वो इंट्यूशन तो है,
लेकिन वो इंट्यूशन को कैसे बदलेंगे? इंट्यूशन हुआ या नहीं हुआ
कोई नहीं है ना, सर
सेल्फ एविडेंट
मान लो यार, आप भी नहीं हो पाबंद, आप मुतमिन हो गए अपने इंट्यूशन पे,
आप है। लेकिन इंट्यूशन को तो आप मतलब जो भी इंट्यूटिव एक्टिविटी है उसको तो आप टेस्ट करेंगे रैशनलिटी से?
नहीं,
ऐसा नहीं आया ये सही है
नहीं,
मतलब 17 पागल है जिसमें जा रहे हैं, एक हो सकता है 16 नहीं हो सकते, आप रेशनल ग्राउंड पर कर रहे हैं ना कैलकुलेशन।
नहीं नहीं सर, जो वो दावा कर रहे हैं शहर का, वो शहर का दावा जो है वो ये है कि मैं हजरत ईसा हूँ। आपको ये इजराज जो हुआ है हजरत ईसा होने का, उसकी दलील आपके पास ये कि आपको मैं जान लू, ठीक, तो हजरत ईसा एक ही हो सकते हैं ना, वो अब तो नहीं हो सकते हजरत ईसा, तो दूसरे जो है वो क्या है, पागल है क्या? लिहाजा आपने उनको पागल कर फंक्शन। लेकिन बाद इंट्यूशन ऐसे हुए हैं जो कि उन्होंने साइंस के अंदर तारीख के धारे बदल दिए। ये गुलबर्ग जो है और कैकुल जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पा रहे कि बेंजीन क्या स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन एटम होते हैं इस तरीके, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कभी इस फॉर्म में आ जाते हैं, कभी कोवेलेंट बॉन्ड इस फॉर्म में आ जाते हैं, कभी कोवेलेंट बॉन्ड इधर आ जाते हैं, कभी कोवेलेंट बॉन्ड इधर आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा ये कोवेलेंट बॉन्ड इधर उधर कैसे होते रहते हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? सर जस्टिफिकेशन नहीं समझ में आता। तो कैकुल ने ख्वाब में नहीं बल्कि जीते जागते बैठे हुए उसने ये देखा कि बेंजीन रिंग है ऐसे, उसके ऊपर एक क्लाउड है कोवेलेंट बॉन्ड का, नीचे भी क्लाउड है कोवेलेंट बॉन्ड का, और कभी ये क्लाउड इधर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कभी इधर बनाता है, और ये सैंडविच है, बेंजीन रिंग इज जस्ट लाइक अ सैंडविच बिटवीन टू क्लाउड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक केमिस्ट्री के अंदर ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, वो कहता है मैंने देखा है ये बेंजीन ने, उसके ऊपर ये मैंने देख लिया, उसको लेकर जब उसने थियोराइज करना शुरू किया तो पूरे बेंजीन के रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिए, सारे कंपाउंड एक्सप्लेन कर दिए। वो कहता है द रियलिटी हैज अनवील्ड इटसेल्फ बिफोर, हकीकत ने अपने आप को मुझे दिखा दिया अपने आपको कि देखो।
कौन था?
कैकुल जो है वो हमारी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन है।
दूसरा
गुल्डबर्ग,
ये दोनों जो है काम कर रहे हैं, जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर पे साला बाद में नहीं समझ आ रहा, उसके कंपाउंड ही एक्सप्लेन नहीं होते, उसके रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं होते, उसने देख लिया हकीकत को वैसा ही जैसा कि हकीकत। दूसरा जो इसमें ये जो एग्जांपल है वो ये बता रही है कि गुलबर्ग को ये इंट्यूशन क्यों हुआ, और वो जो पागल खाने के अंदर जो पागल हजार था उनको वो इंट्यूशन क्यों, उनको ये इंट्यूशन क्यों हुआ। इसका मतलब है आपकी पर्टिकुलैरिटी इन्फ्लुएंस कर देती है आपके इंट्यूशन को, यानी कि जिस लाइफस्टाइल में तुम हो उसी नौयर के इंट्यूशन तुम्हें होने लगेंगे, यानी एस्थेटिकल इंट्यूशन होंगे तुम्हें, आर्टिस्टिक इंट्यूशन होंगे तुम्हें, साइंटिफिक इंट्यूशन होंगे तुम्हें, रिलीजियस इंट्यूशन होंगे तुम्हें,
जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा आपको,
और हकीकत जो तुम्हें मिलेगी वो ग्लिम्सेस में मिलेगी। हाँ, तो वो ग्लिम्सेस के अंदर जो जिस तरह वो होता है आसमान में बिजली कड़कती है तो एकदम से तुम्हें अंधेरे में देखा भी तो बिजली चमकती है तो एकदम से सब नजर आ रहा, फिर एकदम आगे
ये उसमें दिखाया है माइनॉरिटी रिपोर्ट है,
माइनॉरिटी रिपोर्ट में देखा ना मैंने, वो तीनों जो है वो क्या है, वो पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी है, वो ट्रिनिटी है, वो तीन है, वो उसके अंदर एक मरियम है, फादर होली गोस्ट है,
वो पिक्चर्स उनके दिमाग में आती हैं, वो इंटरप्रेट हो जाती है सामने स्क्रीन
पे। इंट्यूशन जो है वो मतलब रेशलिटी की तरह टाइम एंड प्लेस में महसूस है, इंडिपेंडेंटली वो
सीखा नहीं, इंट्यूशन नहीं है, आप इंट्यूटिव एजेंसी जो है वो इंट्यूशन नहीं है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि बेंजीन स्ट्रक्चर तो इसी तरह काम करता है और हमेशा तो इस तरह ही काम करता है, लेकिन जो आदमी बेंजीन पे काम कर रहा है उसके लिए इम्कान है कि वो इंट्यूट कर सके, जैसे बीथोवन बहरा था लेकिन उसने सिम्फनी डेवलप किया, तो कैसे कर ले, सुन ही नहीं सकता तो सिम्फनी कैसे बना रहा, या एडगर जो था वो अनफिनिश्ड सिम्फनी बना रहे थे, यानी कि बनाता था कंपोज करता था और आधी छोड़ देता था बीच में, तो वो कर जब उसकी सुनते हैं आप सिम्फनी तो ब्रेक हो जाती है, तो आप कभी भूलते नहीं उसको। तो डॉक्टर साहब भी मुझे कहते हैं तो आप भाई आपके बहुत सारे आर्टिकल जो है दे आर जस्ट लाइक अनफिनिश्ड सिम्फनीज ऑफ एडगर, तो अंग्रेजों के अंदर ये इस्तेमाल होता है कि कोई काम जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है लेकिन वो आधा छोड़ जो कभी कंप्लीट नहीं कहते हैं आपका जो काम होता है वो आप बीच में से आधा छोड़ के फिर कोई दूसरा काम आप शुरू कर देते, तो वो एडजेक्ट की तरह अनफिनिश्ड टेम्परेरी तो वो ये तो बताने का मतलब ये कि जब हम कोई भी फ्रेमवर्क लेते हैं इंट्यूशन के या रैशनैलिटी के प्लेन के ऊपर, तो उसका खतरा ये होता है कि उसको परखने और जांचने का पैमाना मेरा शऊर खुद हो, लेकिन वही का मामले में आप अपना नफ्स पेश कर देते हैं दूसरी बीइंग के आगे, तो आप अकेले नहीं होते उसको, और उसको कसने का पैमाना वो बीइंग आपको देती है कि आप परख के देख लो कि भाई आप वहां तो नहीं चले गए उस हकीकत से जो कि आपको ऊपर मुनकशिप हुई है, हो गए अपने आप को ठीक कर, और अगर नहीं कर सके तो फिर तुम्हें सजा दे तो
फिर लेवल ऑफ इंट्यूशन है मतलब इंट्यूशन के मुकाबले में ज्यादा एजर जो है मतलब कूल है,
दुनिया में ज्यादा सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया जाने वाला जो मैकेनिज्म है वो या तो रेवलेशन वही है या फिर असलियत, इसी वजह से इंट्यूशन फंक्शन करता है लेकिन उसका दायरा जो होता है वो जमालियात के अंदर ज्यादा फंक्शनल रहा और अखलाकियात के अंदर वो कमजोर हो गया। अगर आपका कोई इंट्यूटिव पोजिशन है अभी तो उसको अपनी जवाब अगर नहीं मिलना तो लोग मुतनफिर हो जाते हैं, मतलब जो दी आर्ट जो थी उसको इंट्यूशन होते थे और जो कह रही थी वो हो जाता था, वो 14 साल की बच्ची थी फ्रेंच और उसको इंट्यूशन हुआ कि मुझे हजरत ईसा ने तलवार दी है कि मैं किंगडम ऑफ हेवन एस्टेब्लिश करूँ दुनिया के, वो कहाँ से आई थी वो तलवार नहीं आई थी,
वो इतनी भारी तलवार जो कि नाइट के पास होती है वो तलवार उसने उठा लिया
के पास जो
हाँ वो उठा ली उसने और वो उड़ भी गई। उसने कहा कि मैं जो लीड करूंगी। बादशाह जो था फ्रेंच बादशाह पिट के बैठा हुआ था, इतना सा इलाका था, मैसूर हो रहा पूरा इलाका फ्रांसीसियों का जो अंग्रेजों ने ले लिया इंग्लिश। तो वो उसमें जो इंग्लिश थे वो थे प्रोटेस्टेंट थे, ये कैथोलिक थे फ्रेंच। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हें जो है किंगडम ऑफ हेवन इस्टेब्लिश करो। तो उसने कहा कि भाई मैं कहाँ करता हूँ, कहा मैं तुम्हें कहा लेके देते। तो बड़ा हंसा। तो उसके तीन बड़े वॉरियर थे फ्रेंच, उन्होंने उसके हाथ पे इस तरह से बैठ कर लिया और उसने कहा जो लॉ कहेगी वो हम कर देंगे। बहुत छोटी सी फॉल्ट नहीं थी। उसने कहा अच्छा फिर देखो ये छोटे से पहले ही दिन कब्जा कर लिया। उसके बाद बड़ी बड़ी उसने जंगे जी और एक बार हजारों की फौज लेकर ब्रिटिशर्स आए तो गई और जाकर उसने जो ब्रिटिश आर्मी जो कमांडर था उसको कहा कि देखो मैं खुदा की तरफ से भेजी गई और बेहतर ये कि तुम ये पूरा इलाका छोड़ के चले जाओ और अगर तुमने इलाका नहीं छोड़ा तो इस मैदान को जो है तुम्हारी गर्दन सरों से जो है भर दूंगी और इसमें बहुत खून बहेगा और बहुत गर्दनें कटेंगी और वो सब गर्दनें तुम लोगों की। तो बड़ा बहुत बड़ा वॉरियर था, थोड़ी देर तो सोचता रहा और फिर आप पूरी फौज लेकर चला बगैर लड़े। बाद में उसको प्रोसिक्यूट कर दिया कि वो कैथोलिक था बुनियादी तौर पर, तो वो डरते थे कैथोलिक। तो यौन ने बहुत बड़ी एक 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 जंग लड़ी और उसमें बहुत लोग मारे, बहुत लोग मारे दोनों तरफ। इसके भी सीने में तीर लगा, सीने में तीर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है मर जाएगी, ये तो 15-16 साल की बच्ची है। तो वो जो है वो जब हकीम को बुला के लाए तो हकीम ने कहा कि इसने तीर, उन्होंने कहा तीर इसने खींच लिया है, हाथ से खींच के निकाल दिया। तो उसने कहा कि ये तो सो रही है, उन्हें क्या मर गई, उन्हें नहीं तो सो रही। उसने तीन दिन में लगा मर गई खड़ी। तो उसको फिर इंट्यूशन हो रहा है कि हजरत ईसा के सर से खून पे है और हजरत ईसा उसे कह रहे हैं जौ तुम ये क्या कर रही है। तो वो कंफ्लिक्टिंग इंट्यूशन हो रहे हैं उसको। तो फ्रांस का पूरा इलाका उसने ले लिया, फ्रेंच बादशाह ने मुआहदा कर लिया और उसको पकड़ के अंग्रेजों के हवाले कर दिया, अंग्रेजों ने उसको जला दिया। कि ये वो भी रिच कॉन्फ्लिक्टिंग इंट्यूशन हो रहा था। एक तरफ कह रही है हजरत ईसा ने कहा है कि जहाज करो और एक तरफ कह रही है हजरत ईसा नाखुश भी है इससे। कॉन्फ्लिक्टिंग इंट्यूशन हो रहे हैं ना, वो तो पता नहीं क्या इंटरप्रेट कर रही है, सही इंटरप्रेट नहीं कर रही। उम्र भी कम है उसकी, बच्ची भी है वो, यू नो व्हाट आई मीन। तो बताने का मतलब ये कि इंट्यूशन की बुनियाद पर लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल की है। उसको जब उन्होंने परखा है तो असलियत के पैमाने पे ही परखा या फिर मजहब के पैमाने पे परखा, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो वो चीज जो है वो है प्राइवेट ही। बल्कि तो मुझे ये भी पता नहीं वो मुस्तनद रिवायत है ना जो अगर उबैदा बिन जर्रा से कहा था कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, अगर तुमने किया चढ़ गए पहाड़ पे और देखा तो असल फौज असल मुकाबला वहां था, वरना वो मार खा दे। अब लोग कहते हैं अगर तुम्हारे तो वहां से वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं है तो टाइम और स्पेस में थोड़ी कैद होता है, टाइम और स्पेस में कैद नहीं होता। औरंगजेब के बारे में ये एस्टेब्लिश है कि वो मुरादाबाद करके पता चला लेता था कहां पर इंसर्जेंसी हो रहा है, इंट्यूटिवली उसे पता चल जाएगा कहां इंसर्जेंसी हो रही है, खत्म करवा देगा। प्रियम्प्टिव डॉक्टर नहीं होती थी, एस्टेब्लिश हो जाता था बाद में, गायब रहते थे लोग। लोग कहते थे कि आला हजरत के खिलाफ सोचना भी नहीं क्योंकि उसे पता चल जाएगा।
डॉल का कहते हैं हद से ज्यादा शक करते हैं, शक की
इंतजारी है इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने की एक वजह है डाउट।
हाँ नहीं नहीं डाउट नहीं करते थे ना,
तो यकीन करते
थे, वो तो यकीन करते अमल कर गुजरते थे। और दूसरे एंटी शिया थे बहुत डॉक्टर नहीं आते, मौलाना मोहम्मद अहमद से ज्यादा एंटी शिया, बहुत शियों को भी बहुत मारा। तो वो जो है इंट्यूटिव एक्सपीरियंस कुल्लियत में जो हकीकत तुम्हें देगा और पर्टिकुलरिटी में जो हकीकत, उसमें डिफरेंसेस हो जाएंगे कि वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है उसको तुम जब पूरी के ऊपर अप्लाई करोगे तो हमेशा ठीक रिजल्ट नहीं देगा, गलत रिजल्ट भी देगा। तुमने सही अखलाक नहीं किया उसका, सही अप्लाई नहीं किया तुमने उसको, सही इंटरप्रेट नहीं किया तुमने। तो प्राइवेट ये डिलेमा है इंट्यूशन, इस वजह से दुनिया में ये दोनों मैकेनिज्म जो है मोरालिटी के, रेशनैलिटी और रिव्यू टेक्स, ज्यादा स्ट्रांग पैराडाइम। ठीक है अनुराज यहीं पर कसरत लेते हैं।
रमजान में क्या होगा, रमजान में क्या टाइम नमाज 2 बजे, मतलब रमजान क्या होता है 1 बजे
नहीं, टाइमिंग चेंज।